शांति, ओम शांति। प्रातःकालीन सत्रों में आप राजयोग के विषय में सुन भी रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। अभी तक हमने समझा कि राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेह पूर्ण संबंध, ये सर्वश्रेष्ठ संबंध है, सर्वोच्च संबंध है, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है, क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है और ये सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाला संबंध है। ऐसे तो संसार में भी संबंधों में हमें प्राप्ति होती है, क्योंकि हम संबंधों में रहते हैं, हमें स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन वो परिवर्तनशील है क्योंकि व्यक्ति की मनस्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। तो जो व्यक्ति आज हमें प्रेम करता है वो कल हमें नफरत भी कर सकता है, जो हमें सुख देता है वो हमें दुख भी दे सकता है। हम सब अपने जीवन में संबंधों के अनुभवी हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बदलते, वो सदा एक जैसे हैं। तो वो सदा ही सुख दाता है, वो सदा ही शांति का दाता है, वो प्यार का सागर है और इसीलिए ये संबंध भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। और जब दुख होता है तो हम किसको याद कर रहे होते हैं? भगवान को ही याद कर रहे होते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम ईश्वर को याद करते हैं। तो राजयोग से हमें जो प्राप्तियां होती हैं वो भी आप सुन रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। राजयोग हमें कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनाता है, राजा बनाता है, हम स्वयं के राजा बनते हैं। सामान्यतः हम इंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी हमें इंद्रियां जैसे चलाती हैं वैसे ही हमारा जीवन चलता है। तो स्वयं पर अधिकार होने लगता है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। राजयोग से मन की शांति मिलती है, मन एकाग्र होता है, ईश्वर से समीपता का हम अनुभव करते हैं। योग से इंद्रिय संयम होते हुए हम स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होते हैं। आज के तनाव मुक्त तनाव के जीवन में हम तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारा सिस्टम भी रिलैक्स होता है। राजयोग से हमारा व्यक्तित्व विकास भी होता है और हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे संबंध में भी सुधार होता है। राजयोग को हम कहेंगे एक चार्जर की तरह है। जैसे जब हम बैटरी को चार्जर से पावर सोर्स से जोड़ते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो डिस्चार्ज होने का विज्ञान ये है कि जो बैटरी के केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन जब हम उसे चार्ज करते हैं तो फिर से वो कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ भी जब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हमारे मन वचन कर्म डिसऑर्गेनाइज होते हैं, यानी हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन जब परमात्मा से हमारा संबंध होता है जो पावर सोर्स है, तो फिर हमारे मन वचन कर्म ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। ये चार्जिंग की निशानी है। योग अभ्यास एक बांध की तरह भी है। जैसे नदी पर जब बांध बना दिया जाता है तो उस पानी का कई प्रकार से सदुपयोग होता है, उससे बिजली बनती है, उससे चैनल्स निकाल करके अनेक स्थानों पर सिंचाई की जाती है, पीने के पानी की वो सप्लाई होती है। ऐसे ही जब हम मन को यूं ही छोड़ देते हैं, अगर नदी का पानी ऐसे ही बहने दिया जाए तो उसका उतना सदुपयोग नहीं होगा और कभी अगर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो वो जनधन की हानि भी कर सकता है। तो ऐसे ही मन है हमारा मन की शक्तियों को यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए, जो मन का स्वभाव है कि मन की प्रकृति है चंचल, कभी मन इस इधर की बात सोचता है, कभी उधर की बात सोचता है, तो ऐसे हमारे मन की शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें चैनलाइज कर देते हैं, एक दिशा दे देते हैं हमारे मन को, तो फिर जो सफलता हम चाहते हैं वो हमें मिलती है। क्योंकि मन की शक्ति वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाने की भी ताकत रखती है। और राजयोग सभी योगों का समन्वय है। भारत में अनेक प्रकार के योग किए जाते हैं, लगभग 8 प्रकार के योग हैं, जिसमें ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, समत्व योग, संन्यास योग, हठ योग, सहज योग, ये सब योग हैं। तो योग इन सभी योगों का फल देने वाला है, क्योंकि राजयोग स्वयं परमात्मा के द्वारा सिखाया गया योग है, ये किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया। स्वयं परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वही हमें ये राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो ये ज्ञान योग है, क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान माना समझ, तो इसमें हमें पूरी समझ मिलती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमारा संबंध प्राप्ति क्या है। तो ये अंधश्रद्धा नहीं है, इसमें हमारा लक्ष्य और उद्देश्य हमें पूर्णतया स्पष्ट है कि हम क्या प्राप्त करने वाले हैं इस योग के द्वारा। फिर ये बुद्धि योग है, क्योंकि राजयोग अभ्यास में हम मन और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम अंतरचक्षु भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के विषय इन स्थूल नेत्रों से देखने वाले विषय नहीं हैं, इन्हें हम अनुभव करते हैं अपने अंतरचक्षु के द्वारा। तो मन एक अदृश्य माध्यम है, मन स्वयं भी अदृश्य है। मन को हम देखते हैं क्या? किसी ने देखा है अपने मन को? नहीं, लेकिन 24 घंटे हमारा मन काम कर रहा है। तो मन वो अदृश्य शक्ति है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी विचार तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं और उनसे शक्ति भी ग्रहण करती हैं। आज विज्ञान के युग में हम इनके अनुभवी हैं। आज हम मोबाइल से बात करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं, तो दिखाई देने वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है। मेरे सेट से कुछ तरंगे निकलती हैं जो दूसरे के सेट तक पहुंचती हैं, उसके बीच में वो टावर कनेक्शन होते हैं, और फिर दूसरे के सेट से भी यही प्रक्रिया होती है, और हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि हम सामने ही बात कर रहे हैं। तो भले ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रक्रिया तो हो रही है। तो ऐसे ही मन से जब हम परमात्मा को याद कर रहे हैं तो दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा कि क्या कनेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है, क्योंकि हमारी विचार तरंगे हम प्रेषित कर रहे हैं भगवान की तरफ। ऐसे ही राजयोग कर्म योग है। कर्म करते हुए ईश्वर की याद, इसे हम कर्म योग कहते हैं। सामान्यतः हम जब कर्म करते हैं तो हम सांसारिक स्मृतियों में रहते हैं, लेकिन परमात्मा की याद में जब हम कर्म करते हैं तो वो साधारण कर्म ही क्यों ना हो, वो सत्कर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा भाव बदल जाता है। कर्म का जो फल होता है वो उसके पीछे वृत्ति और भाव क्या है उससे जुड़ा हुआ होता है। कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मानो जैसे कि देखने का कर्म है, समझने के लिए तो हम कई भाव से देख सकते हैं, कोई प्यार से देख सकता है, कोई गुस्से से देखता है ना, किसी के लिए हम कहते हैं इनकी बुरी नजर है, और गुरु की नजर तो कहते हैं कि नजर से निहाल करने वाली है। तो दृष्टि वही है, देखने की क्रिया वही है, लेकिन भाव क्या है उसके पीछे, उसके लिए कर्म का परिणाम बदल जाता है। तो यहां भी जब हम साधारण स्मृतियों में कर्म कर रहे हैं और यदि ईश्वर की याद में कर्म कर रहे हैं तो हमारे भाव बदल जाते हैं, इसलिए वो कर्म सत्कर्म हो जाते हैं और वो पदम गुना फल देने वाले होते हैं। ये ऐसे है जैसे हम आम का बीज बोते हैं। आम का बीज ऐसा बीज है जिसे हम बोएंगे तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो फलना शुरू होगा तो फिर हम ही नहीं खाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी उसे खाती हैं। उसके लिए कहते हैं दादा बोए और पोता खाए। तो यानी कर्म योग का जो फल है हम वर्तमान में ही अनुभव नहीं करते, क्योंकि वर्तमान में वो हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं जो ईश्वर की याद में किए गए, तो वो हमें जो शक्ति देते हैं, जो खुशी देते हैं, वो तो है ही प्रत्यक्ष फल, लेकिन उनका जो प्रारब्ध जमा होता है, जो संचित होता है, वो अनेक जन्मों के लिए हमारा भाग्य बनाता है। तो कर्म योग का फल इतना ऊंचा है और वो हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भी कर सकते हैं, ये हमारे दैनिक कर्म है जो हम करते ही हैं, इसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। कई बार हम सोचते हैं हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमें समय ही कहाँ है कि हम बैठकर योग करें। तो राजयोग कोई हमेशा बैठकर योग करने वाला है नहीं। कर्म योग का मतलब यही है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को हम ईश्वर की याद से जोड़ दें, उसको ईश्वर को हम समर्पित कर दें, तो वो समय की बात नहीं, वो तो हमें समय मिलता ही है, बस मन की दिशा को बदलने की जरूरत है। तो राजयोग कर्म योग का फल देता है और ये भक्ति योग भी है। भक्ति माना होता है परमात्मा के प्रति प्रेम श्रद्धा और समर्पण का भाव, ये संबंध से होता है, संबंधों में ही प्रेम श्रद्धा और समर्पण होता है। और इसीलिए भगवान के लिए हम गाते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, या तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो सर्व मम देव देव कहा कि परमात्मा मेरे सब सर्व संबंधी हैं, यानी ही इज ऑल इन वन। दुनिया में कोई एक व्यक्ति सर्व संबंधी नहीं हो सकता, माता अलग होगी, पिता अलग होगा, भाई अलग, बहन अलग, दोस्त अलग, पत्नी अलग, पति अलग, बच्चे अलग, सब अलग अलग हैं, टीचर अलग, गुरु अलग, लेकिन एक परमात्मा में वो शक्ति है कि वो सर्व संबंधों का अनुभव हमें एक में ही करा सकते हैं। तो हम देखते हैं जो भी परम भक्त हुए संसार में, जिन्होंने भगवान से अपने संबंध अनुभव किए, जैसे मीराबाई थी, उन्होंने पति का संबंध अनुभव किया, प्रहलाद ने पिता के रूप में उन्हें याद किया, ऐसे अर्जुन ने दोस्त के रूप में उन्हें माना, अहिल्याबाई ने उन्हें बच्चे के रूप में याद किया, जिसने भी जिस संबंध से ईश्वर से भाव जोड़ा उन्होंने समय आने पर उनकी वो भावना पूरी की और रक्षा भी की, उनके जीवन को की रक्षा भी की। तो राजयोग में भी हम परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, हम जिस संबंध से उन्हें याद करना चाहें, माता पिता, शिक्षक, गुरु, दोस्त, साथी, जो भी संबंध हम ईश्वर के साथ अनुभव करना चाहें वो हम करते हैं। ये राजयोग संन्यास योग भी है। वैसे भारतीय संस्कृति में संन्यास का अर्थ क्या है, घर बार छोड़कर चले जाते हैं, फिर कहीं तीर्थ में जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और भगवान की याद में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन राजयोग हमें ऐसा संन्यास नहीं सिखाता। राजयोग में संन्यास है घर गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए हम बुराइयों का संन्यास करें। जो विकार हैं, जो हमें जीवन में दुख देते हैं, जो हमारे जीवन को अशांत करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संन्यास ही सही अर्थों में संन्यास है। कोई घर बार छोड़कर चला जाए और विकारों का संन्यास नहीं कर सकता है, कर पाते हैं, तो वो संन्यास को और ही बदनाम करते हैं। आज हम देखते हैं भले घर बार छोड़कर बैठते हैं लेकिन बुराइयों को नहीं छोड़ पाते, बुराइयों में लिप्त रहते हैं, तो वो संन्यास व्यर्थ हो जाता है। लेकिन संसार में रहते हुए बुराइयों का संन्यास करना, वो उस संन्यास से भी महान संन्यास है। तो परमात्मा हमें ये संन्यास सिखाते हैं। फिर ये समत्व योग है। समत्व का अर्थ है स्थिर चित होना। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं, जैसे सागर में लहरें उठती हैं और बैठती हैं, तो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख से हमारा जीवन गुजरता है। कभी हम सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी हम सफल होते हैं तो कभी असफल भी होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है तो कभी ग्लानी भी होती है। लेकिन एक योगी हर स्थिति में समान रहता है, वो शांत रहता है और स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि हर स्थिति परिवर्तनशील है। ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है। तो दुख में बहुत दुखी हो गए, दुख में असफलता में कई लोग बहुत निराश हताश हो जाते हैं, और सुख में सफलता में अहंकार में आ जाते हैं, तो दोनों ही मन को विचलित करने वाली स्थितियां हैं। तो इसीलिए योग की ये सिद्धि है कि हर स्थिति में हम अपने मन को संतुलित और शांत रख पाते हैं। राजयोग हठ योग भी है। हठ योग वैसे कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए हठ करना, कई प्रकार के जप तप व्रत उपवास करना, जैसे कई भक्त करते हैं नवरात्रे में निर्जल रखेंगे, 9 दिन बिल्कुल कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, या दर्शन के लिए कष्ट उठा करके यात्रा करेंगे, पैदल जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे मीलों तक, ना इस तरह के शरीर को कष्ट देते हैं ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं, और जो हम मनोकामना रखते हैं वो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। इसको कहते हैं हठ करना, ईश्वर से एक प्रकार का हठ। तो राजयोग में हम इस तरह का हठ नहीं करते, लेकिन स्वयं के परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा करना, अपने से हट करना। जैसे आज सारा दिन कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। अब कई बातें आ सकती हैं जो मुझे गुस्सा दिला सकती हैं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई मेरे से झूठ बोल देगा, कोई मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करेगा, या कोई मेरी निंदा कर देगा। जो भी बातें हमें गुस्सा दिला सकती हैं वो कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, लेकिन मैंने व्रत लिया है। जैसे वो व्रत रखते हैं हम, तो मेरे सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन कोई परोस दे तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, नहीं आज तो मेरा व्रत है, हम नहीं खाएंगे। तो हमें पता है कि जिस इष्ट के लिए मैंने ये व्रत रखा है मुझे उसको नाराज नहीं करना है। तो यहां भी भगवान से हमने प्रतिज्ञा की कि आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो फिर व्रत है माना, चाहे जो भी हो जाए उसके लिए मुझे कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी शांत रहना पड़े, कितना भी धैर्य रखना पड़े, लेकिन ये मेरा आज का व्रत है। और एक दिन हम सफल हो गए तो फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम अपनी इस कमी को जीत सकते हैं। अब जो हम आधार लेते हैं परमात्मा को याद करने के, हम सब भगवान को याद तो करते ही हैं, पर हमारी अपनी अपनी विधियां हैं, अपनी श्रद्धा है, अपनी परंपरा है या अपनी मान्यताएं हैं, उस आधार पर हम भगवान को याद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमारे घर में एक पूजा का स्थान होता है, या हमारा बड़ा घर है तो एक छोटा मंदिर बना लेते हैं हम घर में ही, और उसमें रोज सुबह नियम से अगरबत्ती करना या दिया जलाना, फिर जो भी हमारी स्तुति है मंत्र है वो हम करते हैं, और हमारा भाव क्या होता है, सब कुछ हमारे जीवन में ठीक ठाक चलता रहे, भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे। कोई खास दिन होते हैं तो हम मंदिरों में जाकर दर्शन भी कर लेते हैं, फिर चाहे वो धक्के वाले ही क्यों ना हो। ऐसा होता है कि जो विशेष दिन होते हैं उस दिन सभी दर्शन करने आते हैं, तो मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि एक धक्के में अंदर और दूसरे धक्के में बाहर। लेकिन हमारी भावना होती है कि नहीं, आज के दिन अगर हमने दर्शन किए तो जो प्राप्ति हमें होगी, जो फल मिलेगा वो श्रेष्ठ होगा, तो फिर हम ऐसे भी करते हैं। तो ये कुछ स्थूल जो हम विधियां अपनाते हैं, मंत्र जाप करना, माला जपना, ये जैसे कहा कि स्तुति वगैरह करना, भगवान से हम पूरी तरह संबंध का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो हमें अज्ञान है, परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और जैसे हमने मंत्र जाप किया, मानो मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, या जीवन में कोई उतार चढ़ाव होता है तो हमें मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो, आप इतनी बार इसको जपेंगे तो आपका संकट दूर हो जाएगा या मनोकामना पूरी हो जाएगी, 108 बार जपो, 1008 बार, या जो भी लाख बार ऐसे कहते हैं। लेकिन मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत वर्तमान में हमारी भाषा नहीं है, तो हमें वो मंत्र समझ में नहीं आते और उससे हमारे भाव जुड़ते नहीं हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हम में से कितनों को इसका अर्थ मालूम है? दो तीन हाथ उठा रहे। तो हम सबको उसका अर्थ तो नहीं मालूम, या हम कहते हैं ओम नमो शिवाय या कोई भी देवी के मंत्र का हम जाप करते हैं मानो। तो जब हम मंत्र जपना शुरू करते हैं तो मंत्र में हमारा मन आता है, सांसारिक बातों से निकल जाता है, तो शुरू शुरू में हमें शांति मिलती है, अच्छा लगता है जब हम वो मंत्र जप रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम बार बार जप रहे हैं, कितनी बार, 108 बार या जितनी भी गिनती हमें बताई गई, तो फिर क्या होता है, मन गिनती में लग जाता है कि ये 108 बार हुआ कि नहीं हुआ। तो गिनती से योग हो गया हमारा, भगवान से योग नहीं होता, गिनती से योग हो जाता है। फिर मंत्र क्या है, संस्कृत में मंत्र का अर्थ होता है सलाह, जैसे मंत्री माना सलाहकार, मंत्रणा माना सलाह देना। तो मंत्र का मतलब है अपने मन को सलाह देना, ए मन तुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। तो राजयोग में हम संस्कृत में मंत्र नहीं जपते, लेकिन अपने मन को हम सलाह देते हैं, यानी हर एक विचार ही एक मंत्र की तरह है। तो हम मन को क्या विचार देते हैं, मैं आत्मा हूं, तो मैंने अपने आप को स्मृति दिलाई कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतना में आत्मा हूं। फिर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो मेरा जो निजी अस्तित्व है वो शांति पसंद है ना। हम सबको क्या पसंद होता है, गुस्सा पसंद है या शांति पसंद है? शांति पसंद है। तो ये मेरा निजी स्वभाव है, तो मैं अपने मन को वो सलाह दे रही हूं कि मन तुझे कैसा होना चाहिए, किस तरह का चिंतन मेरा, मेरे चिंतन की दिशा होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं राजयोग में शांति हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, हम अपने स्वरूप में स्थित हुए और हमें शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही अनुभव करते हैं। अगर मेरे विचार शांति के हैं तो हम शांति का अनुभव करेंगे, अगर मेरे विचार दुख के हैं तो हम दुख का अनुभव करेंगे, अगर मेरे विचार खुशी के हैं तो हम खुशी का अनुभव करेंगे। तो अनुभूति विचारों से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए राजयोग में हम कोई मंत्र का आधार नहीं लेते हैं या माला जाप भी नहीं करते। आजकल तो वैसे भी माला जाप कम ही करते हैं, नहीं तो कबीरदास जी ने कहा, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। होता ये है कि हाथ में मणके घूमते हैं, राम राम रामी, जो भी हमें जपना है, हरे कृष्ण वो हम जपते हैं, तो मुख जपता रहता है और मन घूमना शुरू कर देता है। तो मन को हम परमात्मा में एकाग्र नहीं कर पाते, तो हम राजयोग में मन को स्थूल आधार नहीं देते, सूक्ष्म आधार। जिन विधियों से मन किसी व्यक्ति को याद करता है, जैसे एक बच्चा है उसका अपने पिता से संबंध है, तो उसे अपने पिता की याद स्वतः ही आती है, है ना। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की संतान है, तो वो संबंध है, स्नेह है, प्राप्ति है परमात्मा से, तो उसके आधार पर हम उन्हें याद करते हैं, तो वो याद हमारी स्वतः याद होती है, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब किसी व्यक्ति को याद करने के आधार क्या है? पहचान होनी चाहिए। बिना पहचान के हम याद नहीं कर सकते। दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, हम कितने लोगों को याद करते हैं जो हमारे परिचय के दायरे में है, और सिर्फ परिचय नहीं, जिनसे हमारा संबंध भी है, वही हमारी यादों में होते हैं। तो परमात्मा से हमारी पहचान हुई, परमात्मा से परिचय हुआ ना सभी का। अभी तक तो हम समझते थे इतने सब देवी देवता हैं, इतने सब जो भी धर्म पिता हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, इन सभी को हम समझ रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च रूप में परमात्मा किस रूप में पूजे हैं, आपने कल समझा ना सेशन में, कौन सा स्वरूप परमात्मा का सर्वधर्म मान्य है और सर्वोच्च है जी, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिन्हें हम शिव कहते हैं, और धर्म वाले उन्हें अपना नाम देते हैं, खुदा, अल्लाह, गॉड फादर, वाहेगुरु, जो भी कहते हैं, हम उन्हें शिव कहते हैं, क्योंकि शिव भी संस्कृत भाषा का शब्द है जो यथा नाम तथा गुण वाला है, वो कल्याणकारी है, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, इसलिए हमने उनको शिव कहा। तो परमात्मा से अब हमारी पहचान है और संबंध भी, हमें पता है हमारे सर्व संबंध ईश्वर के साथ है। तो संबंधों के आधार पर तीन प्रकार की याद होती है, एक होती है हम याद करते हैं, दूसरा हमें याद आती है, और तीसरा हमें याद सताती है। तो याद करते हैं स्वार्थ से, हमें किसी से काम है तो हम उसे याद करते हैं, ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, या कोई अवसर है, कोई अवसर है और हमें निमंत्रण देना है अपने सब मित्र संबंधियों को, तो हम एक एक को याद करते हैं कि कोई रह ना जाए, कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए, तो हम ऐसे याद करते हैं। याद आती है उनकी जो हमारे बहुत समीप होते हैं, जिनसे हमारा स्नेह होता है, जैसे परिवार के सदस्य है ना, तो हमें उनको याद करना नहीं पड़ता, अपने आप उनकी याद आती है। और याद सताती है किसकी, जो सदा के लिए हमसे अलग हो गए या बिछुड़ गए, मानो मृत्यु हो जाती है किसी प्रियजन की, अब पता है कि वो आने वाले तो नहीं है जो चले गए, तो फिर जब भी उनको याद करेंगे मन दुखी हो जाएगा। ऐसे ही मानो बेटा है विदेश में पढ़ रहा है और पता चलता है वो बीमार है, तो उसे याद करके दुखी होंगे, क्योंकि एकदम तो विदेश नहीं जा सकते, तो उसने दवाई ली नहीं ली, ठीक से खाया कि नहीं खाया, तो ये है दुख देने वाली याद। तो इन तीनों प्रकार की याद में परमात्मा की याद कौन सी होनी चाहिए? याद करते हैं, याद आती है, और याद सताती है। जो समझते हैं परमात्मा को याद करते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो समझते हैं याद आती है, नहीं आती है, और याद, अच्छा एक दो है, और याद सताती है, तो सब तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी याद होनी चाहिए। तो परमात्मा की याद सताने वाली याद नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी याद हमें कभी दुख नहीं देती, वो तो दुख हरता सुख करता है। तो जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमें सुख ही अनुभव होगा, प्यार ही मिलेगा, उनकी शांति का अनुभव होगा। फिर परमात्मा को हम याद करते हैं, उसकी याद आती नहीं है। आज वर्तमान समय में भगवान की याद स्वार्थ से ही होती है। अच्छा, एक एक्सरसाइज कराते हैं आपसे, आप उस व्यक्ति को याद करो जो आपके जीवन में सबसे प्रिय है, माना जो हमने कहा जिसकी याद अपने आप आती है, याद करना नहीं पड़ता, पर नंबर वन स्थान है उसका आपकी लाइफ में वो व्यक्ति। फिर नंबर टू, उसके बाद जिनसे आपका संबंध और स्नेह है, और फिर नंबर थ्री भी सोचें कि उनके बाद किनका स्थान है। तो क्या इन तीन स्थानों में किसी में भी परमात्मा का स्थान आया? किसी के इन तीन रिलेशंस में परमात्मा का स्थान आया? हाँ, उठाइए, हाथ उठाइए जिनका आया। हाँ है, तीन चार हैं। तो आज परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो दूर का संबंध है ना, याद समीप संबंधों में आती है, या तो टूट चुका है या फिर बहुत दूर का संबंध है। तो याद हम करते हैं वर्तमान समय में। स्वार्थ क्या है? मेरे जीवन में दुख आया, जैसे कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख आए कोई, तो या तो दुख आया या फिर मेरी कोई मनोकामना है। एक स्टूडेंट है, उसे एग्जाम में पास होना है, भगवान पास करा देना। अच्छा, पास हो गए तो आप भगवान अच्छी नौकरी लगवा देना। अच्छा, अच्छी नौकरी लग गई तो अच्छे घर में शादी करा देना। फिर वो हो गया तो अब एक अच्छा घर होना चाहिए। अच्छा, वो हो गया तो अब एक बेटा होना चाहिए। मानो ये सांसारिक मनोकामनाएं भी हम भगवान के सामने जाकर कहते रहते हैं और सौदा भी करते रहते हैं। सौदा करते हैं, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो हम कितने रुपए का प्रसाद या नारियल, जो भी हमारी क्षमता है वो हम कहते हैं। तो अगर हमारी कामना पूरी हो गई तो भगवान को प्रसाद मिलता है, और अगर नहीं पूरी हुई तो हम भूल जाते हैं। तो हमने भगवान को कौन सी श्रेणी में ला दिया? मनुष्य की श्रेणी में। हम देखते हैं मनुष्य बिना लिए दिए काम नहीं करते, तो भगवान को भी कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमारा काम करेगा। तुलसीदास जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। बिना मांगे मोती भी मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती। हम अपने जीवन में अनुभवी हैं। कोई भिखारी हमारे सामने आता है तो हमें कैसा लगता है? किसी को भी भिखारी पसंद नहीं आता है, तो हम उसको सिखा देंगे कि अरे तुम काम कर सकते हो तो भीख क्यों मांगते हो। पर अगर हमें लगता है कि ये दया का पात्र है, इसको भीख मिलनी ही चाहिए, तो भी हम कितना देंगे उसको? मेरे पॉकेट में सबसे छोटा नोट वो निकालेंगे और वो हम उनको देंगे। तो हमने जज किया ना, इसको भीख मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी। भगवान के सामने हम कैसे खड़े हैं, मांग रहे हैं, तो क्या वो हमें जज नहीं करेगा? उसने हमें इतना अद्भुत मानव शरीर दिया है। मानव योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है, तो ऐसा अद्भुत शरीर है कि आप असंभव को संभव करने की ताकत रखते हैं। तो जब पहले से ही इतना कुछ दे दिया और फिर भी हम संसार की छोटी छोटी चीजें कर्म करने के बजाय मांग रहे हैं भगवान से, तो वो देखिएगा मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं हैं, क्योंकि हमें मांगने की जरूरत नहीं है। परमात्मा से हम संबंध का अनुभव करते हैं। जब हम ये समझते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों की आवश्यकताएं माँ बाप स्वतः ही पूरी करते हैं। कोई बच्चे मांगते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे स्कूल में पढ़ना है, मेरा क्या भविष्य, कौन सोचता है, कौन चिंता करता है? माँ बाप खुद चिंता कर रहे होते हैं। तो जब वो हमारा अनादि मात पिता है तो उससे पता है हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और वो अपने आप ही पूरी करता है। हमें सिर्फ उसे संबंध से याद करना है, उस संबंध का अनुभव हम ईश्वर से करें कि वो मेरे मात पिता हैं, वो मेरे शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं, मेरे साथी हैं। और संबंध समानता के आधार पर समीप होते हैं। जितना संबंधों में समानता होती है, जैसे हम देखते हैं जिनसे हमारे विचार मिलते हैं उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, दो बच्चे आपस में मिलेंगे तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाएगी, दो डॉक्टर आपस में मिलेंगे क्योंकि प्रोफेशन की समानता है, ऐसे ही पत्रकार आपस में मिलेंगे या जो भी जर्नलिस्ट आपस में मिलेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे अंदर वो समानता है। तो परमात्मा के साथ भी हमारी समानताएं हैं, तो राजयोग में वो समानता का अनुभव करते हुए हम उन्हें याद करते हैं। दुनिया में भी देखो, अगर संबंध भी जोड़ते हैं ना, तो संबंध जोड़ते हुए ये देखते हैं कि इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कुंडली मिलाते हैं ना, तो गुण मिलते हैं तो कहते हैं योग है, और गुण नहीं मिलते तो योग नहीं है, माना इनका संबंध टिकेगा नहीं। तो वहां भी गुण मिलना चाहिए, तो समानता, गुणों की समानता है तो संबंध टिकेगा। तो परमात्मा के साथ हमारी स्वरूप की समानता है, निवास स्थान की समानता है और गुणों की समानता है। शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो हम परमात्मा को आत्मिक स्थिति में याद करते हैं। आप दो दिन से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपने देखा कि हमारा जो इनिशिएशन होता है राजयोग का चिंतन, वो क्या है? आत्मचिंतन। हम आत्मिक स्मृति में मन को ले जाते हैं क्योंकि परमात्मा तो सदा ही निराकार है, वो तो देहधारी है ही नहीं, वो शरीर से न्यारे हैं, लेकिन आत्मा ने शरीर लिया हुआ है। तो ये शरीर एक आवरण है आत्मा के ऊपर, जैसे दो तारों को हम जोड़ेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी, रबड़ सहित अगर आपने उनको जोड़ दिया तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन अगर हमें करंट चाहिए तो रबड़ हटाना होगा, रबड़ हटा के जब हम जोड़ेंगे तब उसमें करंट फ्लो होगी। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारा संबंध जब हम देह सहित जोड़ते हैं तो वो शक्ति हमें अनुभव नहीं होगी, वो कनेक्शन नहीं बनता है। अगर आज हम रेडियो सुनते हैं या टीवी चैनल देखते हैं तो हमें ट्यून करना होता है, जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिशन हो रहा है उस फ्रिक्वेंसी पर मेरा सेट होना चाहिए, मेरी रेडियो स्टेशन की सुई होनी चाहिए, तब हम सुन पाएंगे। नहीं तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे वो स्टेशन सुनाई नहीं देगा। तो मेरे मन की फ्रिक्वेंसी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से मैच होनी चाहिए, उनकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। और हम इस संसार में रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में है, तो हमारी फ्रिक्वेंसी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। तो मुझे उनके लेवल पर जाना है तो फिर हम सोल कॉन्शियस स्टेज में पहले मन को लाते हैं, अपने आप को इस फिजिकल बॉडी से डिटैच करते हैं, तो फिर हमारी फ्रिक्वेंसी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से मिलती है। तो ये स्वरूप की समानता का अनुभव करते हुए, जो कि राजयोग का फर्स्ट स्टेप है, हम निवास स्थान की समानता का अनुभव करते हैं और वो है परम धाम। परम धाम में परमात्मा निवास करते हैं और हमारा भी स्थाई निवास स्थान परम धाम ही है। आत्मा भी परम धाम से सृष्टि पर आई है, जैसे पिता और पुत्र का घर एक ही होता है, तो हम एक ही घर के रहने वाले हैं। इस दुनिया में भी अगर कोई हमें मिल जाते हैं जो हमारे ही स्थान के रहने वाले हों तो हमें कैसा लगता है? बहुत अपनापन लगता है उनसे। जितना क्लोज हम हो जाते हैं उतना दूसरों से नहीं। आप जैसे यहाँ आए हैं, हो सकता है आप जिस शहर से आए हों उस शहर के कोई यहाँ डेडिकेटेड मेंबर हैं मानो, और उनसे आपकी मुलाकात होती है तो वो आपको भाई जैसे लगते हैं ना। तो ये फर्क होता है कि वो समानता होते ही एक समीपता का अनुभव। तो परमात्मा से भी जब हमें ये ज्ञान हो गया कि वो और हम एक ही घर के रहने वाले हैं, तो मन को परम धाम में ले जाकर परमात्मा को याद करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। वैसे जो जहां रहता है उसको हम वहीं याद करते हैं। मानो आपके कोई मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, तो जब आप उनको याद करेंगे तो आपका मन कहाँ ट्रैवल करेगा? कहाँ ट्रैवल करेगा? दिल्ली में। अगर वो अमेरिका में रहते हैं तो मन कहाँ ट्रैवल कर कर जाएगा? अमेरिका में। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और जब हम उन्हें याद करेंगे तो हमारा मन परम धाम में ही उन्हें याद करता है। तो इसीलिए हम मन को परम धाम में ले जाते हैं जो उनका निवास स्थान है। और तीसरी समानता परमात्मा के साथ हमारी गुणों की समानता है, क्योंकि शिव बाबा जिन गुणों में सागर हैं उन्हीं गुणों में आत्मा स्वरूप है। वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, तो आत्मा भी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो हम उनके गुणों का मनन चिंतन करते हुए उन गुणों को स्वयं में अनुभव करते हैं। भक्ति में भी हमने भगवान को ऐसे ही याद किया है। आज तक परमात्मा को याद करने की विधि क्या है? उसके गुणों का स्मरण करना, स्तुति करना, महिमा करना। कीर्तन क्या है? उनकी कीर्ति गाना। स्तुति माना भी महिमा करना ही होता है, क्योंकि उनमें अवगुण तो है ही नहीं, भगवान तो गुणों का भंडार है। तो हमने भक्ति में बोल बोल कर किया। कीर्तन करना माना हम साजों और बाजों के साथ उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, तो हमारी शक्तियां बहिर्मुखी हो जाती हैं। तो वो करने से हमें खुशी मिलती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि शक्ति जमा नहीं होती। लेकिन राजयोग में हम वही कर रहे हैं लेकिन मनन कर रहे हैं, यानी हमारी शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो जब अंतर्मुखी होती हैं तो फिर वो गुण हमारे स्वरूप में आने लगते हैं, हम अपने व्यक्तित्व में उसे अनुभव करते हैं। यानी वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप की स्थिति की हमें अनुभूति होती है। कई बार कई कहते हैं कि भगवान से हम कुछ नहीं मांगते, दुनिया की चीजें हम कुछ नहीं मांगते, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जीवन में सुख शांति बनी रहे ये तो हम मांगते हैं भगवान से। तो क्या कहेंगे? मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए? सही में नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम उनकी याद से ये अपने आप ही अनुभव करते हैं। जैसे सागर के किनारे हम जाएंगे तो क्या हमें सागर से हवा मांगनी पड़ेगी? अगर हम आग के समीप बैठे हैं तो क्या हमें गर्मी मांगनी पड़ेगी? अगर हम एसी में बैठे हैं तो ठंडक मांगनी पड़ेगी? नहीं। उसका गुण है, हमें उस स्थान पर होने की जरूरत है, अपने आप हमें वो अनुभव होगा। जब हम परम धाम में मन को परमात्मा के समीप ले जाते हैं तो फिर हमें स्वतः ही ये अनुभव होने लगता है, हमें ये भी मांगने की जरूरत नहीं है कि भगवान मुझे सुख दे दो, मुझे शांति दे दो, मुझे शक्ति दे दो, वो हमारे को स्वतः ही मिलने लगती है। अब जब हम योग का अभ्यास शुरू करते हैं प्रथम चरण में, तो मन की स्थिति क्या होती है? मन हमारा सहज एकाग्र नहीं होता। जैसे कहा कि मन का स्वभाव है भटकना, मन एक विषय से दूसरे विषय में भटकता है, यानी हम एक विचार करना चाहते हैं पर तुरंत ही मन में दूसरा विचार आ जाता है। अभी हमने चिंतन शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तुरंत विचार आएगा, अभी यहाँ से उठकर बाहर जाएंगे, आज साइट सीन के लिए जाना है, बस की बुकिंग, वो सब सारा वो सोचना शुरू कर देंगे। फिर सोचेंगे नहीं, अभी तो योग में बैठे हैं, चलो मन को फिर से हम वहाँ लेकर आएंगे। तो ऐसे मन की स्थिति होती है, कई बार हम अंतर्द्वंद की स्थिति में हो जाते हैं, एक संघर्ष की स्थिति मन में आ जाती है, कई विचारों का टकराव हम महसूस करते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं, जो भगवान का ध्यान करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा, लेकिन जो चिंतन अभी तक नहीं चला था मन में वो कहाँ कहाँ से विचार मन में आते हैं। तो कई बार और ही सिर में दर्द हो जाता है ना, हम बैठे तो योग करने हैं पर 10 मिनट के अंदर ही सिर भारी हो गया। तो सिर भारी किससे हुआ? योग से नहीं हुआ, हमारे मन में जो व्यर्थ और नेगेटिव भरा हुआ था वो चलने से हमारा मन भारी हो गया। तो कई बार हम थोड़ा निराश हो जाते हैं कि योग तो लगता नहीं, मन तो एकाग्र होता नहीं, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर हमें लगता है कि ये हम कुछ और काम करते तो अच्छा था। लेकिन अगर हमारा मन भटकता है तो हमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो वो मुश्किल ही होता है। किसी भी काम में हम एक बार में, दो चार बार में एक्सपर्ट नहीं हो जाते, निरंतर हम अभ्यास करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं तो कितना समय लगता है, अगर हम फोर व्हीलर चलाना सीखते हैं या टू व्हीलर चलाना सीखते हैं तो क्या एक ही बार में सीख जाते हैं? समय लगता है ना, कितना सावधानी से शुरू में हम चलाते हैं, एक एक चीज को ऑपरेट करना सीखते हैं, और फिर जब एक महीने के अंदर अंदर हम चलाने में एक्सपर्ट हो गए तो अब हम बातें करते हुए भी, मोबाइल पर बात करते हुए भी ड्राइव कर लेते हैं, है ना। तो जब कोई फिजिकल चीज में हमें कुशलता प्राप्त करने में भी समय लगता है तो मन तो सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म मन को हम ऐसे कैसे समझ लेते हैं कि एक ही बार में मेरा मन भगवान में लग जाएगा या दो चार बार में ही मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, है ना। किसी दीवार को तोड़ने में मैंने 100 हथौड़े लगाए, 100वें हथौड़े में वो दीवार टूटी तो क्या पहले के 99 हथौड़े बेकार गए? बेकार गए। हर हथौड़े ने उस दीवार को कमजोर किया और 100वें हथौड़े में जाकर के वो टूटी। तो हमारा हर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो इसीलिए हमें वो प्रतिदिन करना है। आप देखेंगे भले आपका मन नहीं लगा, लेकिन जब भी आपने स्पिरिचुअल थॉट्स किए, योग करना मतलब स्पिरिचुअल थॉट्स करना, तो हम स्पिरिचुअल थॉट्स करते हैं तो हमें लगता है हमारा मन पहले से शांत हो गया, भगवान से कनेक्शन अनुभव नहीं हुआ भले, लेकिन मन की स्थिति बदल गई। वो आप जरूर अनुभव करेंगे, कुछ ना कुछ अंतर हम जरूर अनुभव करते हैं। तो ये प्रारंभ में हम आत्मचिंतन से शुरू करते हैं, धीरे धीरे जैसे मैंने कहा 2, 4, 5, 10 बार के प्रयास से हमारा मन आत्मचिंतन में, अनुभूति में जाने लगता है। मैं शांत स्वरूप हूँ तो उसके साथ शांति का अनुभव होना, मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो उसके साथ प्रेम का अनुभव होना, ये हम आत्मिक गुण अनुभव करने लगते हैं। फिर दूसरा स्टेप है मन को परम धाम में परमात्मा के समीप अनुभव करना। मन जाएगा परम धाम में, शरीर तो यही है ना, तो मन जाएगा परम धाम में तो हम परमात्मा को ज्योति स्वरूप में अपने अंतर चक्षु से देख रहे हैं, और उस ज्योति के प्रकाश को, वो दिव्य है तो उस दिव्य प्रकाश को हम अनुभव कर रहे हैं अपने में, और साथ साथ उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं कि शिव बाबा शांति के सागर हैं। वो शांति के सागर हैं तो चारों ओर शांति के प्रकंपन ही हैं, तो मैं उस शांति में हूं तो मुझे भी वो शांति का अनुभव होने लगता है। ऐसे ही वो प्यार के सागर हैं तो मैं उसकी संतान हूँ, परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, तो उस संबंध से, उस प्यार का अनुभव करें कि वो रूहानी प्यार, परमात्मा का जो प्यार है वो ईश्वरीय प्यार है, या उससे जो मिलने वाला सुख है वो अतींद्रिय सुख है, इंद्रियों वाला सुख नहीं। दुनिया का जो सुख है वो इंद्रिय सुख है, कुछ अच्छा देख लिया, अच्छा सुन लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा कर लिया, माना ये सब इंद्रियों से मिलने वाले सुख है। लेकिन जो आत्मिक सुख है, जब हम देह से न्यारे होकर के अनुभव करते हैं, वो अतींद्रिय, इंद्रियों से परे का सुख, वो ईश्वरीय सुख हमें परमात्मा से अनुभव होता है। फिर हम संबंध, जो संबंध से भगवान को याद करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वो संबंध से अपने भाव कहें हम भगवान को, क्योंकि कोई ना कोई भाव हमारे मन में होते हैं या कोई ना कोई बात हमारे मन में होती है। आज की दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बात को लेकर मेरे मन में टेंशन नहीं है या चिंता नहीं है या परेशानी नहीं है, उलझन नहीं है, जो कुछ भी है हम वो संबंध से उनको शेयर कर सकते हैं। और जब हम उनको शेयर करेंगे तो हमें ये फील होगा कि हम हल्के हो गए, जैसे कि हमारा बोझ उन्होंने ले लिया। तो सर्व संबंधों से वो अनुभव करना, इसको कहते हैं रूह रिहान, रूह की रूह से बातचीत। वैसे दुनिया में हम शरीर की शरीर से बातचीत होती है, शरीर से हम बात करते हैं, लेकिन परम धाम में आत्मा की परमात्मा से बात, तो आत्मा भी रूह है, परमात्मा सुप्रीम रूह है, तो इसीलिए उसको कहा रूह रिहान। तो वो हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरु, खुदा दोस्त, साजन, बच्चा, जो भी संबंध हम अनुभव करना चाहें, वो संबंधों से हम उन्हें प्यार से याद करें, स्नेह से याद करें और परमात्मा के गुणों का अनुभव करें। तो ये एकाग्रता की स्थिति कि सिर्फ एक भगवान की याद ही मेरे मन में है, जिसको कहते हैं लक्ष्य पर हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जैसे अर्जुन का मिसाल आता है महाभारत में कि वो धनुर्विद्या में प्रवीण क्यों थे, कि उनकी एकाग्रता इतनी श्रेष्ठ थी। जैसे बचपन में जब गुरु द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे थे, कौरवों पांडवों को दोनों को ही सिखा रहे थे, तो फिर गुरु बीच बीच में परीक्षा भी लेते हैं, तो उन्होंने परीक्षा ली उनकी कि ये कहाँ तक सीखे हैं, तो एक मिट्टी की चिड़िया बना करके पेड़ पर रख दिया और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। फिर सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, फिर युधिष्ठिर को पूछा युधिष्ठिर तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है, तो उसने कहा गुरुजी सब कुछ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, डालियां दिख रही हैं, चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो गुरु ने कहा तुम हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन से भी पूछा तो कहा गुरुजी मुझे भी सब दिख रहा है, गुरु ने कहा तुम भी हट जाओ। फिर उन्होंने भीम को बुलाया तो भीम ने भी यही जवाब दिया, तो उसको भी हटा दिया। अब अर्जुन की बारी थी और अर्जुन जब आया तो अर्जुन ने एक मिनट के बाद कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो फिर गुरु ने कहा कि तुम तीर चलाओ, और उसने तीर चलाया और वो सीधा चिड़िया की आंख में लगा। तो यह है एकाग्रता, यानी मन पूरी तरह से एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित है। नहीं तो क्या होता है कि एक संकल्प हमने ईश्वर का किया, दूसरा संकल्प संसार का आ जाएगा, तीसरा संकल्प किसी और का आ जाएगा, तो फिर मन, इसको ही हम मन का भटकना कहते हैं। लेकिन मन एकाग्र हो जाना माना पूरी तरह से मन ईश्वर की याद में है, ये एकाग्रता होती है हमारी। उसमें परमात्मा की शक्ति भी हमें मदद करती है, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड हैं, वो सुप्रीम पावर है, तो वो हमें अनुभूति की स्थिति में ले जाता है। और अनुभूति की स्थिति क्या है, आत्मा में हम परमात्मा की ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करते हैं और मन की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। मानो आप जब योग में बैठे तो मन किसी कारण से अशांत है, लेकिन योग की अनुभूति की स्थिति होने के बाद मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। अगर मन किसी कारण से दुखी था तो मन सुख की स्थिति में आ जाता है, अगर मन किसी कारण से उदास था तो मन खुश हो जाता है। तो ये मन की स्थिति का परिवर्तन हम अनुभव करते हैं जब हमारी योग की एकाग्रता और अनुभूति की स्थिति बनती है। तो प्रारंभ में शायद नहीं बनेगी जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें अभ्यास करना होगा, मन को आदत नहीं है एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने की। आज तक कभी हमने अपने मन को ऐसी दिशा देने का प्रयास ही नहीं किया, तो उसको उस दिशा में लाने में थोड़ा अभ्यास, थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। और जब ये हम कर पाएंगे तो कुछ समय में ही आप देखेंगे कि कुछ मिनट भी अगर आपको ये अनुभव हो गया तो मन अपने आप टाइम ढूंढेगा कि कब मुझे समय मिले और मैं फिर से वो अनुभव करूं। फिर मन की ये स्थिति हो जाती है कि हम योग के लिए समय ढूंढते हैं कि कब हमें समय मिले और हम योग में फिर से वैसा ही अनुभव करें। तो योग करना माना स्वयं परमात्मा से, भगवान से रूरिहान करना, जो हमारे दिल की बातें सदा सुनते हैं। ही इज ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी कहीं भी किसी भी समय। एक इंसान हमेशा आपके लिए सब जगह हाजिर नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा को हम कभी भी कहीं भी अपने दिल की बात कह सकते हैं और गोपनीय रहती है वो। किसी इंसान को हम कहेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो बात उस तक रहेगी, वो किसी दूसरे तीसरे तक जा सकती है और कई बार उसका नुकसान हमें फिर उठाना पड़ता है। लेकिन भगवान हमारे मन की बात किसी को भी नहीं कहते हैं और वो हमें सदा ही निश्चल प्रेम करते हैं, इसीलिए उनकी छत्र छाया में हम सदा सुरक्षित हैं। जब भी हम उन्हें याद करेंगे वो हमारी रक्षा के लिए है और वो हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं देते, यानी हमें उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कई भय के कारण परमात्मा को याद करते हैं, इवन गुरुओं से भी डरते हैं कि गुरु नाराज हो गए तो कहीं श्राप ना दे देवे हमें। तो भगवान कभी हमें श्राप नहीं देते, वो तो प्यार का सागर है, जैसे बताया दुख करता सुख करता है। तो वो थोड़ी अपने बच्चों के लिए इस तरह के कर्म करेंगे ना। तो परमात्मा से हमें कभी भी भय करने की आवश्यकता नहीं, वो प्यार का संबंध है और सदा ही उनकी याद से हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। तो वो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव कराते हैं। और राजयोग का अभ्यास एक अग्नि के समान है, जैसे अग्नि में हम कोई भी चीज डालते हैं तो वो उसी रूप में वापस नहीं आएगी कभी भी। अगर आपने कोई सॉफ्ट चीज डाली तो वो कठोर हो जाएगी, और अगर कठोर चीज डाली तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। मानो आपने आयरन डाल दिया भट्टी में तो क्या होगा, पिघल जाएगा। इतनी कठोर धातु है लेकिन फिर भी वो पिघल जाएगी। और एक मिट्टी की ईंट जो सॉफ्ट है वो डाल दी तो ईंट पक जाएगी ना, तो रूप बदल जाता है। तो ऐसे ही इस योग अग्नि में आत्मा का रूप बदलता है, यानी जो हमारे पूर्व के विकर्म हैं, अशुद्धियां हैं, वो सब नष्ट होने लगती हैं और आत्मा शुद्ध निर्मल और पवित्र होने लगती है, उसका ये रूप बदलने लगता है। आत्मा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है हम प्रतिदिन जो योग अभ्यास करते हैं, और हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। जैसे हमने बताया योग एक चार्जर की तरह है, तो हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, और न सिर्फ हम खुद को चार्ज करते हैं लेकिन अपने एटमॉस्फेयर को भी हम चार्ज करते हैं, क्योंकि जो भी हम चिंतन कर रहे हैं उसका एक ऑरा होता है, उसके प्रकंपन आसपास के वायुमंडल में फैलते हैं, क्योंकि माइंड एक एनर्जी है और एनर्जी फैलती है। तो जैसे आप यहाँ आए, ज्ञान सरोवर में आए हैं, तो ज्ञान सरोवर के प्रकंपन आपको दुनिया के प्रकंपन से भिन्न लगे होंगे। यहाँ के वातावरण की जो शांति है, यहाँ का जो सुकून है, यहाँ की जो पवित्रता है, वो हम अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ जो रहते हैं प्रतिदिन वो योग अभ्यास करते हैं तो इस वातावरण में उन प्रकंपनों का प्रभाव है, तो उसको हम अनुभव करते हैं। तो ऐसे हम आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को भी यथार्थ रूप से याद करना, यानी वो जो ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति, उसको भी उसी परम ज्योति से स्वरूप से याद करना ही राजयोग मेडिटेशन है। ये राजयोग की विधि है। अब राजयोग की बैठक कैसी हो, तो राजयोग के लिए हम सहज बैठक लेते हैं, इसको हम सुखासन लगाना कहते हैं, या साधारण भाषा में आलती पालती मार कर हम बैठते हैं ऐसे कहते हैं। तो वैसे हम अगर जमीन पर बैठते हैं तो उत्तम होता है, क्योंकि जमीन पर बैठना माना जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से कांटेक्ट में आता है और वो एनर्जी सर्कुलेट होती है, तो एकाग्रता में हमें मदद मिलती है। लेकिन अगर नीचे हम नहीं बैठ सकते ना, हमारी आयु के कारण किसी को घुटने में तकलीफ है, किसी को कमर में तकलीफ है या जो भी, तो हम सोफे और कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, जैसे अभी आप सभी सोफा कुर्सी पर बैठे हैं। तो हम लेकिन कम से कम 20 से 30 मिनट तक शारीरिक स्थिरता को बनाए हुए हम ये योग अभ्यास कर सकें, ऐसी बैठक हम लें। फिर राजयोग में हम खुली आंखों से योग का अभ्यास करते हैं। ऐसा नहीं हम आंखें बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो अभ्यास हमारा होना चाहिए वो खुली आंखों से होना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार हमें भ्रम होता है, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान का ध्यान करना है तो आंख बंद करने से ज्यादा एकाग्रता होती है। लेकिन अगर हम आंख बंद करते हैं तो दो बातें हैं, एक तो हम आंख बंद करके सोते हैं, तो अगर हम सोए हुए हैं, माना सोए हुए नहीं थके हुए हैं, जब हम योग में बैठे और हम थके हुए हैं और हमने आंख बंद की, तो दो मिनट भी नहीं बैठ सकेंगे, हम सो जाएंगे। तो हम राजयोग नहीं करेंगे, निद्रा योग करेंगे। यहां भी हम देखते हैं कई बार, यहां से जब हम कमेंट्री देते हैं योग की तो शांत होता है ना मन, तो नींद में चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें निद्रा योग नहीं करना है। दूसरा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम सपने देखते हैं और सपने हम सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, तो आंख बंद करते ही सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो जाता है और उसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो हम कहां की बातें सोचने लग जाते हैं और उनसे फिर मन को निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुली आंख से योग करना, क्योंकि ये कर्म योग है, राजयोग, कर्म करते हुए हम भगवान को याद करते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, एक पत्नी अपने पति को याद करती, तो क्या आंखें बंद कर लेती हैं? सहज याद है ना। तो परमात्मा को भी हम संबंध से याद कर रहे हैं, तो हम कभी भी चलते फिरते काम करते उसको याद कर सकते हैं, तो उसके लिए आंखें बंद करेंगे तो काम कैसे करेंगे ना। तो इसीलिए खुली आंख से अभ्यास। फिर खुली आंख में हमें एकाग्रता का अभ्यास है। हमें लगता है बंद आंख में एकाग्रता होगी तो थोड़ा समय ऐसा होता है कि हमारे को डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है और हमारा थोड़ा ध्यान लगा, लेकिन खुली आंख में शुरू में डिस्ट्रैक्शन लगता है। शुरू में लगता है दिख रहा है सब, क्या पड़ा है, कौन बैठा है, कौन जा रहा है, लेकिन जैसे हम कर्म में मन को एकाग्र कर लेते हैं, आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मानो तल्लीन है उसमें, कौन मेरे पास से गुजर गया, किसने क्या कहा, हमें पता चलता है? चलता है क्या? कोई पूछेगा भी ना कौन गया, तो मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? आंख तो खुली थी, लेकिन आंख भले खुली थी लेकिन मन तो कहीं और है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो देखते हुए भी हमने नहीं देखा। तो यहां भी शुरू में हमें सब थोड़ा सा एक मिनट ये सब चीजें दिखी, लेकिन फिर मन तो ट्रेवल कर रहा है, मन यहां थोड़ी बैठा है, मन गया परम धाम में परमात्मा के पास और वहां उनकी लगन में है, तो यहाँ नीचे कौन बोल रहा है, कौन जा रहा है, हम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो मन की एकाग्रता होते ही ये सब चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। और इसीलिए योग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वातावरण शांत हो। एक बार हम वातावरण से न्यारे हो गए तो वातावरण में ढोल भी बज रहे हो तो भी हमें पता नहीं चलेगा। जैसे हम अपने काम में एकाग्र होते हैं, कितनी भी आवाजें हों हमें कुछ पता नहीं चलता है। और राजयोग में हम श्वासों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते ना, माना ये फिजिकल योग नहीं है, इसमें हम शरीर से परे जाते हैं। वी गो बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल बॉडी। तो इसीलिए श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, प्राणायाम करना, वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वो ठीक है कि अगर हम एक उसको एक्सरसाइज की तरह करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध उससे नहीं होता है हमारा। प्राणायाम से परमात्मा से कनेक्शन हमारा नहीं होता है। तो राजयोग तो हमें ईश्वर तक ले जा रहा है, तो इसीलिए हम श्वासों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। फिर कुछ ऐसा समझते हैं ये अच्छा तो लगता है लेकिन ऊब जाते हैं। तो शुरू में जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज कठिन होती है, लेकिन जब उससे प्राप्ति होने लगती है हमें, जब उसके लाभ मिलने लगते हैं अपने जीवन में, तो फिर हमें आनंद आता है। ऊब की बजाय हमें खुशी मिलती है। और यह मुश्किल प्रारंभ में ही है। राजयोग में हम विचारों को शून्य नहीं करते। विचार शून्य करना, थॉटलेस होना, ये मन का स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव सोचना है तो वो सोचेगा जरूर। आप चलो उसको सप्रेस कर देंगे तो हो सकता है एक दो मिनट हमारे मन में कोई विचार नहीं है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे उससे तेज गति से हमारा मन चलेगा ना। तो मन की दिशा बदल सकते हैं हम, लेकिन मन को सप्रेस नहीं कर सकते, विचार शून्य नहीं कर सकते। तो राजयोग में हम यही विधि प्रयोग करते हैं कि सांसारिक विचारों से मन को निकालकर कहाँ ले जा रहे हैं, आध्यात्मिक विचारों में, हम स्पिरिचुअल थॉट्स में अपने मन को ले जाते हैं। और मन भले ही बहुत चंचल है, लेकिन मन को जैसा हम अभ्यास देते, मन एक बच्चे की तरह है, जैसे उसको ट्रेनिंग देंगे वैसा ही वो सीख जाएगा। आज तक हमने उसको सिखाया ही नहीं, इसीलिए मन अपनी चंचलता करता रहता है। लेकिन जब हम मन को दिशा देने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे मन उसमें अनुभव करने लगता है और एकाग्र भी होने लगता है। और राजयोग अभ्यास में हम आसपास के वातावरण को भी थोड़ा बदलते हैं। देखा आपने, लाइट्स चेंज कर देते हैं, रेड लाइट करते हैं। रेड लाइट ये परम धाम का रंग है। वैसा ही रंग तो यहाँ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक प्रयास करते हैं कि हमें ऐसा अनुभव हो। तो और मन की कंडीशनिंग भी होती है कि हम कुछ योग कर रहे हैं। ऐसे ही व्हाइट लाइट में बैठे हैं तो शायद इतना मन उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही लाइट चेंज होती है तो हमारा मन तैयार हो जाता है उसके लिए। फिर रेड लाइट जो है वो स्टॉप का भी सिग्नल है। स्टॉप के लिए रेड लाइट प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी मन के लिए सिग्नल है कि अब वर्ल्डली थॉट्स को स्टॉप करना है और स्पिरिचुअल थॉट्स को हमें पुट ऑन करना है। फिर लाल रंग जो है वो शक्ति का भी प्रतीक है। हम कुछ म्यूजिक भी प्ले करते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ गीत बजाते हैं, वो प्रभु स्मृति के गीत होते हैं। तो संगीत में हमारे मन के भाव को बदलने की और मन को दिशा देने की शक्ति है। हम जिस भी तरह के गीत सुनते हैं हमारा मन उसी दिशा में सोचने लगता है। आप देशभक्ति के गीत सुनेंगे तो मन में देशभक्ति के भाव आ जाएंगे ना, भक्ति गीत सुनेंगे तो भक्ति के भाव आ जाएंगे। ऐसे ही साधारण फिल्मी गीत सुनेंगे तो मन उसी तरह से सोचने लगेगा। तो यहाँ भी जब हम योग शुरू करते हैं, ये आधार जो है टेम्परेरी है, माना जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई गीत बजेगा तभी हमारा योग लगेगा। लेकिन शुरुआत में जब हमें योग लगाने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हमने वो गीत सुन लिया तो हमारे मन की दिशा बदल जाती है। कि सारा दिन हम काम करके आए, मानो अभी हम दस मिनट शांति का अनुभव करना चाहते हैं, फिर हमने वो गीत प्ले किया तो मन की दिशा सहज बदल जाती, मन ईश्वर की ओर चला जाता है। और स्थान, जो स्थान हम चुनते हैं, अपने घर में अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो कोई ऐसा स्थान चुने जहां बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, आना जाना ना हो, शांति का स्थान हो। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत उत्तम समय है, यहाँ पर सुबह 3:30 बजे सभी उठते हैं और 4 से 4:45 बजे तक मेडिटेशन करते हैं। तो ये टाइम हमारा अपना टाइम होता है, इसमें हमारा कोई भी बिजनेस या नौकरी या जो भी हम कहें हमारी कारोबार नहीं होती है। तो इस टाइम हम बहुत एकाग्रता से योग के अनुभव कर लेते हैं। पर अगर हम नहीं उठ सकते, क्योंकि आज की जीवन शैली है देर से सोना देर से जागना, 12 बजे 1 बजे सोना और फिर सुबह 8 बजे उठना, ये लाइफस्टाइल है। तो अगर हम जल्दी नहीं उठते तो हमारे पास समय नहीं बचता, एक तो योग करने का कोई मार्जिन ही नहीं रहता, क्योंकि उठते ही आपको जाना है, काम पर जाना है, उसकी तैयारी उसमें लग जाते हैं, तो हम थोड़ा जल्दी उठें। अगर हम 6 बजे उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आपका 10 बजे काम पर जाने का टाइम है तो कोशिश करें 6 बजे उठ जाएं, तो हमारे पास इनफ टाइम है कि हम थोड़ा फ्रेश होकर के आधा घंटा मेडिटेशन कर लें। तो अगर हम मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो वो एनर्जी हमें सारा दिन मदद करेगी। फिर शाम का समय भी अच्छा होता है योग के लिए, शाम को जब हम लौटते हैं तो अगर हो सके और कोई आसपास आपके केंद्र है, अपने ब्रह्मा कुमारी के केंद्र लगभग सभी शहरों में हैं और एक ही शहर में काफी सेंटर भी होते हैं, 8-10 सेंटर भी होते हैं अगर बड़े शहर हैं तो अगर आपके नजदीक कोई ब्रांच है तो हम, क्योंकि उस स्थान का हमारी स्थिति पर फर्क होता है, अंतर पड़ता है, जैसे आप इस स्थान पर आए और हम अपने स्थान पर हैं तो अंतर होता है उसका, तो ऐसे ही वो प्लेस खास उसी के लिए निर्धारित है, तो उसके प्रकंपन, उसकी एटमॉस्फेयर और वो जो एनर्जी है वो हमें एकाग्रता में मदद करती है, और नहीं तो हम घर पर भी कर सकते हैं। तो ये राजयोग की जो विधि आज हमने सीखी योग अभ्यास की, उस आधार पर हम परमात्मा को याद करेंगे और सर्व संबंधों का भी हम ईश्वर के साथ अनुभव करेंगे। तो जैसा चिंतन मैं आपको देती हूँ आप उस चिंतन का अनुसरण करें, मन ही मन उसे अनुभव करने की कोशिश करें। तो ये हमारी अंतर यात्रा है। यात्रा क्यों कहा? क्योंकि मन यात्रा पर जाएगा परम धाम तक, सबसे दूर स्थान, इस दुनिया का जो सबसे दूर का स्थान है वो कौन सा है? परम धाम है। इसीलिए परमात्मा के लिए कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा काम। तो सबसे ऊंचे धाम में वो रहने वाला है, तो हम मन को ले जाएंगे परम धाम में, परमात्मा के पास। तो सभी अपने मन को न्यारा कर लें, अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से, और मन को एकाग्र करेंगे मस्तक के मध्य में, जहां मैं आत्मा निवास करती हूं। मैं चैतन्य शक्ति हूं, दिव्य शक्ति हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मैंने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने कर्म करने के लिए इस शरीर का आधार लिया है। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूं। शांति मुझे पसंद है, शांति में ही सुख समाया है, शांति में ही शक्ति है। मैं अपने कार्य व्यवहार को शांति से बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है। ले जाए मन को इस भौतिक जगत से पार, उस सुनहरी लाल प्रकाश के लोक में, यहां मेरे परम पिता परमात्मा शिव निवास करते हैं। शिव बाबा मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, लेकिन गुणों में सिंधु के समान हैं। वो शांति के सागर हैं, उनके शांति के प्रकंपन मेरे मन को शांत कर रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान है। शिव बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। जब ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं जो परिवर्तन लाना चाहूं ला सकती हूं। शिव बाबा आप ही मेरे सच्चे माता पिता हो, मेरे शिक्षक हो, सद्गुरु हो। आपने मुझे अपना बच्चा बनाकर मुझे अपना प्यार देकर मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। मेरे जन्म जन्म की अभिलाषा आपने पूर्ण की है। आपको पाकर मैं स्वयं को भाग्यवान अनुभव करती हूँ। आप ही मेरे साथी हो, मेरे खुदा दोस्त हो। आप ही मेरे कर्मों में शक्ति भरने वाले हैं। मुझे सद्बुद्धि सन्मार्ग पर चलने की विवेक और प्रेरणा देने वाले हैं। आपकी याद से मैं अतींद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मेरे जीवन के ये पल बहुत अनमोल हैं जब मैं अपने परम पिता के साथ हूँ। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर, संबंधों का प्यार अनुभव कर, मैं अब पुनः इस भौतिक जगत में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत है, शक्तिशाली है और अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति शांति।